ओम शांति। सवेरे के सेशन में हमने स्लीप मैनेजमेंट पे बीकेएसओ गाबा फॉर्मर विंग कमांडर को सुना। अब हम माइंड मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट पर हमारे बीके चंद्रशेखर भाई को सुन रहे हैं, जो फॉर्मरली एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स में आपने 23 साल तक सर्विस की थी और उसके बाद में आपने भी वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, जैसे विंग कमांडर अशोक गाबा ने लिया, क्योंकि आपका डाइवर्सन इस ज्ञान योग की तरफ हो गया था। आप पिछले 18 वर्ष से राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज मास्टर मेमोरी ट्रेनर, ही इज न्यूरोबिक एक्सपर्ट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन मैराथन कैटेगरी, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर फॉर इन्वेंटिंग माइंड टेस्टिंग मशीन। वो मशीन जो सवेरे अशोक गाबा जी ने आपको दिखाई थी, उसका मैन्युफैक्चर इन्वेंशन आपने किया था और उससे वो टेस्टिंग हो सकता था। ही इज ऑथर ऑफ 6 बुक्स ऑन माइंड एंड मेमोरी पावर। ही क्योर्ड हिज ओन कैंसर, हेपेटाइटिस सी एंड डायबिटीज बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राजयोगा। ए वेरी बिग सक्सेस आई कैन से, ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि यहां राजयोगा के द्वारा जो कैट प्रोग्राम चलता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन कैंप, उसके अंदर बिना बाईपास सर्जरी के रिग्रेशन होता है और ये प्रूव करके बताया है, जो वर्ल्ड के कोई कार्डियोलॉजिस्ट ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, वो यहां राजयोगा के द्वारा रिग्रेशन हुआ है और होता है। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए देना चाह रहा हूं कि आप डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं और हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ये सारा कैट प्रोग्राम शुरू किया था और आज वर्ल्ड वाइड में वो कैट प्रोग्राम स्प्रेड हो रहा है, आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि आप डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं और डॉक्टर सतीश गुप्ता के वर्ड्स में ये जो हार्ट डिजीज है, अगले 10 साल में इंडिया में इतना होगा कि हर 5 आदमी के बीच में एक आदमी हार्ट पेशेंट होगा। उसकी अवेयरनेस के लिए जरूरी है कि हम लोग भी कुछ उसमें एफर्ट करें और आपकी मदद की जरूरत इसलिए है कि आप इसकी अवेयरनेस और लोगों को दें कि यहां पर बिना बाईपास के हार्ट में जो ब्लड आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उसका रिग्रेशन हो सकता है। बस उस व्यक्ति को एक काम कराना पड़ता है कि उसकी जो एंजियोग्राफी की हुई है, उस एंजियोग्राफी की फोटो स्टेट कॉपी, प्लस अगर जो वो मेडिसिन ले रहा है उस मेडिसिन की भी एक स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी, वो करके डॉक्टर सतीश गुप्ता केयर ऑफ शांतिवन आबू रोड करके भेज दें। डॉक्टर उसके कागज देखेगा, एज एंड वेन जब वो कैंप होल्ड करेंगे वो उनको बुलाएगा और बिना बाईपास सर्जरी के यहां रिग्रेशन होगा उसका। और एक एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं एक हार्ट पेशेंट था, मेरे भी 87.8% कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट था और वो मैंने ये कैंप अटेंड किया और उसमें रिग्रेशन हुआ। और कई ऐसे लोग हैं, मैंने एक बताया था, हमारे एक इलाहाबाद के भी भाई आए हुए हैं, उनके 100% कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट था जिसके अंदर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हुआ उनके, और इस तरह से कई वैसे व्यक्ति हैं जो इनसे लाभान्वित हो चुके हैं। तो आपने अपना कैंसर का इलाज अभी आप खुद ही बताएंगे, कैंसर का इलाज राजयोगा से किया, हेपेटाइटिस सी एंड डायबिटीज का बाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन राजयोगा से किया। ही रिसीव्ड सनराइज पीस मिशन अवार्ड इन 2008 एंड एट प्रेजेंट ही इज डायरेक्टर मेमोरी लैब प्राइवेट लिमिटेड इनविजिबल डॉक्टर सर्विस। सो मैं हमारे प्राता बीके चंद्रशेखर जी से अनुरोध करूंगा कि इस सब्जेक्ट पर वो आपको लाभान्वित करें। ब्रदर बीके चंद्रशेखर,
शांति। तो आज मेरा भी सौभाग्य है कि एडवोकेट्स और जूरिस्ट विंग में मेरा जो अनुभव है माइंड और मेमोरी से रिलेटेड, उसको मैं शेयर करूंगा। माइंड और मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाए, हर एक की कंप्लेन होती है कि मैं भूल जाता हूं, मेरा माइंड अनकंट्रोल्ड है, मेमोरी सही नहीं है। कई लोगों की भ्रांतियां हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है मेमोरी वीक होती जाती है। अभी आप दरवाजे से आ रहे हैं तो एक मशीन है जिससे आपका माइंड की स्टेबिलिटी चेक हो रही है। कितने लोगों ने चेक कराया? ओके, वेरी गुड। आप में से कितने लोगों का रीडिंग लेस देन 20 है, 20 से कम है, 20 से कम बहुत लोगों का कम है, ओके। और 20 से 50 के बीच में मेजोरिटी है, और 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा भी है, 80 से भी ज्यादा किसी का है, 80 से ज्यादा किसी का नहीं है, ओके। तो ये आपके माइंड की स्टेबिलिटी को चेक करता है, माइंड कितना वर्क कर रहा है। अगर आपकी रीडिंग लेस देन 20 है तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रिलैक्स कहे जाएंगे, और बिटवीन 20 टू 50 इसका मतलब कि आपकी स्थिति नॉर्मल है और इसमें स्ट्रेस नहीं है। लेकिन 50 से ज्यादा अगर रीडिंग आपका आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेस है, कुछ ज्यादा ही थॉट्स चल रहे हैं और आपकी मेंटल एनर्जी बाहर की तरफ ज्यादा जा रही है, अंदर कम है। और जिसका 80 से ज्यादा है उसको हम हाइपर स्टेट कहेंगे, वो बहुत ही ज्यादा सोच रहा है। अगर आपकी रीडिंग लेस देन 20 या 20 टू 50 के बीच में कोई ड्रग्स के कारण है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस मशीन की लिमिटेशन है कि ड्रग जो ले रहा है व्यक्ति, एंटीबॉडीज ले रहा है, उसके साथ सही रीडिंग नहीं आता, क्योंकि बॉडी की रेसिस्टेंस ड्रग्स के साथ घटती बढ़ती रहती है। तो अभी हम शुरू करते हैं माइंड एंड मेमोरी मैनेजमेंट राजयोगा के द्वारा। तो सबसे पहले हमें बताएं माइंड पावर या मेमोरी पावर किसे कहते हैं, मेमोरी पावर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मेमोरी पावर। मेमोरी पावर में तीन चीजें होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, रिटेंशन होता है, रिकलेक्शन होता है। ये तीनों ही चीज जब है तभी कही जाएगी कि मेमोरी आपकी अच्छी है। आपने कोई चीज याद किया और जरूरत जब पड़ता है उस समय आप भूल जाते हैं तो उस समय अच्छी मेमोरी नहीं कही जाएगी। स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चंस का आंसर याद करके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और उस समय एग्जामिनेशन हॉल के दौरान उनको क्वेश्चंस का आंसर याद नहीं आए, रिकॉल नहीं हो, और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आने के बाद रिकॉल हो, तो इसको अच्छी मेमोरी कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसलिए रिकलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेमोरी। देखते हैं रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, इसको रजिस्टर करते हैं। आजकल मेमोरी सबकी वीक हो गई है, इसलिए हम रजिस्टर पर रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर पर लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में रजिस्टर करना उसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। भगवान ने हम सबको सुपर कंप्यूटर दिया है, क्योंकि ये कंप्यूटर ही बाकी सारे कंप्यूटर का निर्माण किया है। तो कौन सा कंप्यूटर पावरफुल होना चाहिए, अपना कंप्यूटर। इसको हम हेड ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इसको हम लेके ही चलते हैं हमेशा, इसको छोड़ के नहीं जाते। कोई है जो छोड़ के जाता है कंप्यूटर, सभी लेके चलते हैं हेड ऑफ कंप्यूटर को, ओके। माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ब्रेन, ये चार हमारे कंप्यूटर के टूल्स हैं, इसको जानना पड़ेगा। माइंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड, हिंदी में माइंड का मतलब क्या होता है जी, मन, ओके, वेरी गुड। और इंटेलेक्ट किसे कहते हैं, बुद्धि, इसको दिमाग भी कहते हैं, बुद्धि और दिमाग। और मेमोरी का मतलब क्या होता है, याददाश्त, एक डाटा है जो हमारे मेमोरी या सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, डाटा बैंक में जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको मेमोरी कहते हैं। और ब्रेन, ब्रेन किसे कहते हैं, दिमाग को ब्रेन नहीं कहते, दिमाग बुद्धि है, ब्रेन आपको मस्तिष्क, ब्रेन आपका मस्तिष्क है, ये हमारा फिजिकल पार्ट है। डॉक्टर ब्रेन की सर्जरी करता है, माइंड की सर्जरी नहीं करता। तो ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क। हमारे कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन माइंड और इंटेलेक्ट के द्वारा होता है, मन और बुद्धि, मन और दिमाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है। ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और बाकी सारा हमारा माइंड, मेमोरी और इंटेलेक्ट, ये सब सॉफ्टवेयर है। इसमें इंटेलेक्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर जो दिखाई देता है, ब्रेन दिखाई देता है इसलिए डॉक्टर इसकी सर्जरी करता है। माइंड दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। मेमोरी दिखाई देती है? नहीं दिखाई। अगर MRI हो चाहे पेट स्कैन हो, क्या मेमोरी दिखाई देगा? आएगा स्कैन में? नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर इंटेलेक्ट दिमाग दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो जो चीज नहीं दिखाई देता उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो चीज दिखाई देता है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। यह है हमारा कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, इसका तरीका है। जैसे आम कंप्यूटर में हम फीड करते हैं वैसे इस कंप्यूटर में भी हम फीड करते हैं। देखते हैं कैसे फीड करता है, एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर हम इसका आपको कंसेप्ट बताएंगे। ओके, फर्स्ट रो और सेकेंड रो में जो बैठे हुए हैं नजदीक में, जोर से आप अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताएंगे। मोबाइल का वहां शुरू करेंगे 70, ओके 78, नेक्स्ट वन बाय वन फ्रॉम देयर 78, देन 30, 37, 66, 5, 53, 70, 71, 71, 30, ओके 33, जी 5, 56, नेक्स्ट जी अगेन 56, ओके अगेन 56, देन 90, नेक्स्ट 4, ओके 4, 5, नेक्स्ट जी डबल टू, देन 5, 8, 2 के बाद डबल वन, डबल 82 के बाद डबल 9, देन डबल फाइव, देन डबल एट, नेक्स्ट 4, 4, 4, 1 के बाद, ओके 4, 1 के बाद 4, 5, देन 5, ओके 5, 9, डबल फोर, देन 2, 2, 0, देन 8, 2, 0, देन 8, 2, 5, 6, then 4, 6, two five के बाद 2, 2, 0, 2, 5, then 2, 0, 2, 1, 6, 1, ओके ओके चेनअप ओके एनीवे दे आर द नंबर्स टोल्ड बाय यू. ये सारे नंबर्स आपने बोले हैं. इन सारे नंबर्स को अगर याद करना हो तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? याद ही नहीं होगा. क्यों नहीं याद होगा? पहले ही आपने कंप्यूटर में फीड कर देंगे ना, याद नहीं होगा तो याद हो नहीं होगा, रिकॉल होगा ही नहीं, है ना. इसलिए सबसे पहले तो ये डालना है कि हमें रिकॉर्ड होगा. आपके कंप्यूटर खरीद के लाएंगे तो आप कहेंगे कि इस कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं होगा. काइंडली जिसके पास मोबाइल है ऑफ कर दे या वाइब्रेटर पर रखे, नहीं तो बीच बीच में डिस्टर्ब होगा आपको भी दूसरों को भी. जिसके पास भी मोबाइल है काइंडली स्विच इट ऑफ. हमारा कंप्यूटर ने सब कंप्यूटर को बनाया है. अगर ये सारे नंबर्स जिस कंप्यूटर मैंने टाइप किया उसमें एक बटन दबाएंगे और वो बटन दबाते हैं, सारा का सारा नंबर्स क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा. कहीं भी तकलीफ नहीं होगी सेव होने में, सेकंडों में सेव हो जाएगा. तो इस कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? हमारा कंप्यूटर किया. तो हमारे अपने कंप्यूटर के ऊपर बिलीव नहीं है. बिलीव न होने के कारण क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारी मेमोरी कम है. लेकिन आप सबकी मेमोरी भी अच्छी है, सबकी मेमोरी अच्छी है. इस सेशन के बाद आपको खुद प्रूव हो जाएगा कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आप कितनी जल्दी याद कर लेते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स हमने अपने कंप्यूटर में टाइप किए और सारे के सारे नंबर्स मुझे याद हो गए हैं. सुनना चाहेंगे? मैं आगे आ जाता हूं, अपनी आंख बंद कर लेता हूं. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? सभी सभी को दिखाई दे रहा है नंबर्स? ओके, आपने जो नंबर्स बोले हैं उसको मैं सुनाता हूं. ये अपना आंख बंद कर लेता हूं, मैं अपना थर्ड आई ऑन करता हूं और अपने कंप्यूटर को देखता हूं कि क्या क्या आपने बोला है. नंबर्स आपने जो बोला है वो नंबर्स है 7 8 3 7 6 6 5 3 7 1 3 3 5 6 5 6 9 0 4 5 2 2 5 8 8 2 9 9 5 5 8 8 4 1 4 5 then 5 9 4 4 2 0 8 2 5 6 4 6 7 9 3 5 2 5 2 0 2 1 and 6 1. सारे ठीक है? ये सारे नंबर्स आप कहेंगे तो रिवर्स में भी सुना देंगे, उल्टा सुनना चाहेंगे? ओके, रिवर्स में मैं सुनाता हूं जो नंबर्स आपने बोले हैं. नंबर से 1 6 1 2 1 2 then 0 2 4 4 then 9 5 5 4 1 4 8 8 5 5 9 9 2 8 8 5 2 2 5 4 0 9 then 6 5 6 5 3 3 1 7 3 5 6 6 7 3 and 8 7. आप 20 से भी पूछ सकते हैं कोई भी नंबर, 20 से भी उसके आगे पीछे क्या है नंबर बताइए. टेल मी द नंबर, उसके आगे पीछे क्या है बता देंगे. 9 9 9 5 9 5 9 के बाद में है 4 4, 5 9 के पहले है 4 5. जी 5 6 5 6 तीन जगह पे है. एक जगह 5 6 है, फिर 5 6 है, बाद में 9 0 है. दूसरा जगह 5 6 है, उसके बाद 4 6 है, पहले 8 2 है. तो ऐसी मेमोरी सबकी है, यही है कि मैंने इस कंप्यूटर का ऑपरेशन सीखा है, आपको कंप्यूटर का ऑपरेशन सीखा नहीं है। इस कंप्यूटर का भी आप कोर्सेज करते हैं, 3 महीना कोर्सेज करते हैं तब जाके इसका ऑपरेशन पता चलता है। तो इस कंप्यूटर के बारे में आप जान जाएंगे तो आप भी कर पाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज नॉट ए मैजिक, इट इज जस्ट कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। हाउ कैन यू मैनेजिंग योर मेमोरी फास्टर? ठीक है, तो इस कंप्यूटर के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर के बारे में कितने लोग जानते हैं? अच्छा, काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते। ओके, मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि हमारा कंप्यूटर, जैसे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में कोई भी चीज टाइप करते हैं कोई भी, तो कहां वो टाइपिंग आता है मैसेज? कीबोर्ड से जो भी आप लिखेंगे वो किसके ऊपर आएगा? मॉनिटर के ऊपर आएगा, स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो उसी तरह हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड है हमारा सेंस ऑर्गन। हमारा कौन कौन सा सेंस ऑर्गन है? आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और स्किन है, त्वचा है। ये 5 सेंस ऑर्गन है। इस सेंस ऑर्गन के द्वारा जो भी आप टाइप करेंगे वो कहां आएगा? आपके मॉनिटर पे आएगा। जो भी चीज मॉनिटर पे आता है वो चीज आपको दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? अभी मॉनिटर पे जो आ रहा है वही चीज दिखाई दे रहा है ना? आपका प्रिंटआउट कैसे निकलेगा? जो चीज मॉनिटर पे हो तो उसी का तो कंप्यूटर प्रिंटआउट देगा। जो चीज खुलेगा ही नहीं मॉनिटर पे, उसका प्रिंटआउट निकलेगा कभी भी? नहीं निकलेगा। तो जो खुलता है उसका प्रिंटआउट किस चीज से निकलता है? हमारे मोटर ऑर्गन से। किस चीज से? मोटर ऑर्गन। मोटर ऑर्गन मतलब हमारी कर्मेंद्रियां, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, मुख के द्वारा, दो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके द्वारा। तो 5 सेंस ऑर्गन, 5 मोटर ऑर्गन। जो भी इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे आता है उसी को साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कॉन्शियस माइंड। क्यों बोला कॉन्शियस माइंड? क्योंकि उस वो चीज दिखाई दे रहा है और उस चीज के बारे में आपको पता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि 1 साल पहले आपके बर्थडे पे क्या हुआ था तो आप क्या कहेंगे? मैं आप मेमोरी में जाएंगे, मेमोरी में वो बटन दबाएंगे और वो अगर आपके स्क्रीन पे आ गया तब आप कहेंगे ऐसा ऐसा हुआ था। और अगर वो याद नहीं आए तो आप क्या कहेंगे? याद नहीं है। क्वेश्चन का आंसर याद करके स्टूडेंट जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और उस क्वेश्चन का आंसर वो क्लिक करते हैं मेमोरी में और वो खुलता नहीं है। उनके कंप्यूटर के मॉनिटर पे वो आंसर नहीं खुलता है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस आ गया है ना। हमारा जो मशीन है अगर उसमें रीडिंग 70-75 हो जाए तो स्टूडेंट्स का कंप्यूटर हैंगअप हो जाता है, वो खुलता नहीं है उस समय। और जब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है, अपने दोस्तों से मिलता है और जब उसके दोस्त बोलते हैं कि हमारे पेपर अच्छे नहीं हुए, कई लोग बोलते हैं आज पेपर बहुत टफ था, तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। जैसे स्ट्रेस कम होता है वो उसके मॉनिटर पे आंसर खोल जाता है और तब उसको याद आता है, तब दिखाई देता है ना। तो क्या कहता है? उस समय तो याद ही नहीं आया, अभी याद आ रहा है। इसका मतलब कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या है? स्लो है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी को दिमाग कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दिमाग अगर ठीक से काम करता, स्पीड में काम करता तो क्या होता? आंसर जल्दी याद आ जाता, बटन दबाते ही और पूरा का पूरा रिकॉल हो गया। जैसे हमने बटन दबाया और सारा का सारा रिकॉल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा प्रोसेसर कैसे काम करता है वो सीखना है ना। आप लोगों का प्रोसेसर, हम लोगों का प्रोसेसर को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर की अपडेटिंग होती रहती है ना, कोई 93 मॉडल है, कोई 97 है, कोई 2000 है, कोई XP है, कोई विस्टा है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? दिमाग को अपडेट करना है, अपने कंप्यूटर को अपडेटिंग करना है। हम अपडेट नहीं करते तो हमारा प्रोसेसर स्लो हो जाता है। और बिल्कुल स्लो हो जाए तो क्या होगा? जैसे एक जंगल में कहा जाता है, जंगल में राजा शेर सारे जानवरों को बैठा करके जोक सुना है। सारे जानवर उस समय हंस पड़े लेकिन गधा 3 दिन के बाद हंस रहा था। जब उससे पूछा गया कि क्या बात है आज हंस रहे हो, तो बोला कि उस दिन का जोक अभी समझ में आया। कहने का मतलब उसका प्रोसेसर बहुत ही स्लो है। तभी तो मॉनिटर पे उसको खोलने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि हमारा प्रिंट आउट कैसे निकलता है आप देखिए। मान लीजिए जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन क्या है, टाइप बटन है। स्क्रीन पे मान लीजिए मच्छर ने काटा, जैसे यहां काटने की बाइट की यहां पे मैसेज आता है आपके मॉनिटर पे कि कुछ काट रहा है, वैसे ही आपके आंख को डायरेक्शन मिलता है और आंख देखता है, आंख उस चीज का फोटो लेकर के आपके मॉनिटर पे डालता है, मॉनिटर में वो फोटो सर्च होता है कि ये फोटो किस चीज का है, तो आपके फोटो एल्बम से जवाब आता है फोटो मच्छर का है, फिर वहां से ऑर्डर मिलता है मारो तो मच्छर को मार देते। ऐसा ही होता है ना, सही होता है। तो हमारा मोटर ऑर्गन और सेंस ऑर्गन और बीच में हमारा माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, सारा इन्वॉल्व हो जाता है। और कोई व्यक्ति आपको दरवाजा नॉक करे और आप जाके दरवाजा खोलते हैं, कैसे खोलेंगे, साउंड आपको कान से सुनाई देगा, फिर वहां मॉनिटर पे साउंड आएगा, फिर वहां ऑर्डर होगा कि आप जाके दरवाजा खोलो, आप पैर से, पैर का प्रिंट आउट निकलेगा, पैर से जाके दरवाजा खोल, दरवाजा के पास जाएंगे, हाथ को प्रिंट आउट मिलेगा, हाथ से दरवाजा खुलेगा, जैसे दरवाजा खुलेगा आपका वेब कैमरा उसका फोटोग्राफ लेके आपके मॉनिटर पे डालेगा, फिर आपका दिमाग उस फोटो को सर्च करेगा कि वो मेमोरी में है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, आप कौन है, ऐसे ही बोलेंगे ना, अगर है तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा आप हैं। और कभी कभी फोटो आता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो आप क्या कहेंगे, आपको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा, ऐसा ही होता ही नहीं होता है। तो हमारा कंप्यूटर देखिए कैसे है, जैसे ये कंप्यूटर बना वैसे ही वही कंप्यूटर है, क्योंकि जब ये कंप्यूटर बन रहा था तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर काफी सारा रिसर्च हुआ और पाया गया कि हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, इस कंप्यूटर की कैपेसिटी तो फिर भी लिमिटेड है, हमारे अंदर इतना कैपेसिटी है कि कम से कम 40 लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं वो इंफॉर्मेशन भी अगर हम इसमें डालें तब भी कम पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, हमारा सिस्टम हैंगअप हो जाता है ना, हैंगअप हो जाता है तो दिमाग स्लो मोशन में हो जाता है, याद ही नहीं आता है ना। अगर बिल्कुल स्लो हो जाए तो क्या होगा, मान लिया कि आप ऑफिस से किसी बर्थडे पार्टी पे जाते हैं और बर्थडे पार्टी के पास आपको एक मैसेज मिलता है कि आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई है। अब वो बर्थडे पार्टी में उन्होंने वो मैसेज तो रिसीव किया लेकिन उनके कंप्यूटर के मॉनिटर पे वो मैसेज खुला नहीं, क्योंकि जब तक तो खुलेगा नहीं तो उसे प्रिंट आउट कैसे निकलेगा। आपको कोई जोक सुनाता है तो जोक का पिक्चर बन जाता है, तभी तो आपका प्रिंट आउट निकलता है, स्माइल का निकलता है कि नहीं निकलता है। तो उसी तरह उनका स्लो हो गया है कंप्यूटर, मान लो बहुत स्ट्रेस में है, ऑफिस में काफी स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण कंप्यूटर स्लो हो गया। अब बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, उनको मैसेज मिलता है कि आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई, उनका अभी प्रोसेसर स्लो है, अभी समझ नहीं पा रहा है, मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, तब तक बर्थडे पार्टी से जाकर के आप किसी एक्सीडेंट सीन के पास चले जाते हैं जहां पे किसी की मृत्यु हो गई है, और वहां जाने पे उनका वो मैसेज खुल जाता है कंप्यूटर के ऊपर, उनका प्रिंट आउट कंप्यूटर के ऊपर निकलता है कि तुम्हें करोड़ों की लॉटरी मिल गई आपको। तो उस समय उनका प्रिंट आउट क्या निकलेगा वहां पे, मैं मुझे जिस दिन का इंतजार था वो आ गया, मैं तो माला माल हो गया, मैं तो करोड़ों की लॉटरी लग गई। उस समय लोग क्या बोलेंगे, उसको पागल है, यही बोलेंगे ना, इसको हटाओ यहां से। तो पागलों का भी तो यही होता है ना, उनका इतना स्ट्रेस हो जाता है कि कंप्यूटर पूरा वायरस से करप्ट हो जाता है। फिर उनका क्या, जो जो कंप्यूटर से, उनके कंप्यूटर से जो जो फोल्डर उनके मेंटल स्क्रीन पे खुलता है वैसा ही तो उनका प्रिंट आउट निकलता है। कभी हंसेंगे है ना, कोई उनके कंप्यूटर पे सीन पर हंसने वाला सीन होगा तो हंसेंगे बोल बोल के, है ना, कभी रोने वाला सीन होगा तो रोएंगे, कभी कुछ बोलने वाला सीन होगा तो आपस में ही बात करते रहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, पागल है ना, क्योंकि उसके ब्रेन की एक्टिविटी काफी हाई है, एक इलेक्ट्रिक सिटी की फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज़ उससे भी ज्यादा हो गया, इसलिए फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक का शॉक लगाते हैं, ताकि उसके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, कम हो जाए, हार्डवेयर ही पूरा कंफ्यूज हो गया है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होगा होता है कि हम अपने ब्रेन की एक्टिविटीज, ब्रेन में जो करंट होता है वो सामान्य रहे, ब्रेन की एक्टिविटीज सामान्य रहे। इसीलिए हमने माइंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स बनाया, इसका नाम रखा, पहले इसका नाम रखा था स्ट्रेस मेजरमेंट मशीन। तो जब किसी को हम बोलते थे कि इस पे हाथ लगाओ तो डर से लगाता नहीं था, क्योंकि उसका स्ट्रेस डिस्क्लोज हो जाएगा। फिर हमने प्रिंसिपल वही रखा, हमने इसका नाम चेंज कर दिया हैप्पीनेस टेस्टिंग मशीन। ये आपकी खुशी को नापेगा, सभी लोग हाथ लगाते हैं, देखते हैं कितनी खुशी है। लोग समझते हैं इसमें जितना ज्यादा रेटिंग आएगा वो मैं हैप्पी है ना? लेकिन है उल्टा, इसमें जितना कम रीडिंग आएगा उतना ही अच्छा है। ये मशीन हमने इन्वेंट किया है, हमारे पास कुछ सैंपल है, बाहर देखेंगे तो मिल जाएगा। ओके, तो ये कंप्यूटर इस तरह हमारा काम करता है, ठीक है? आपको समझ में आ गया। और मेमोरी क्या है? मेमोरी डाटा है, हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो डाटा है वही तो मेमोरी है, डाटा बैंक है। साइकोलॉजिस्ट ने माइंड को कॉन्शियस माइंड कह दिया क्योंकि वो मॉनिटर पे वही दिखाई देता है। और जो माइंड का पार्ट, जो इंफॉर्मेशन डाटा जो मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसको साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोल दिया, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, है ना, उन्होंने नाम बना दिया। लेकिन वो एक्चुअली माइंड क्या है, एक डाटा है जो हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पे खुलता है। आपने देखा ना कंप्यूटर के मॉनिटर पे क्या लिखा हुआ है, टीम लिखा हुआ है। टीम का मतलब थॉट्स, हमारे विचार, हमारा विचार ही मन है, हमारी भावनाएं ही मन है। इसलिए कहते हैं मन, मन की भावनाएं, दिमाग की भावनाएं कोई नहीं कहता। एटीट्यूड, मनोवृत्ति बोलते हैं, दिमाग की वृत्ति नहीं बोलते। मेमोरीज, आप मेमोरीज में बटन दबाते हैं कहां खुलता है, आपके मॉनिटर पे खुलता है। ये चारों चीज आपके कॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअस आते रहते हैं, इसी को माइंड कहते हैं। मेमोरी का जो पार्ट खुलता नहीं है, जो अंदर है, उसको क्या कहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे। एक साल पहले क्या घटना है, घटी है, आपको कहां है वो चीज, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपके पिछले जन्म में क्या हुआ था, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। आप हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो हिप्नोटिकली रिग्रेस करेगा आपको, तो आप बोलेंगे हाँ मैं पिछले जन्म में अफ्रीका में जन्म लिया था, फिर अफ्रीकन लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे, डॉक्टर को भी नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, उस समय का फोल्डर खुल जाएगा आपका। तो ये हमारा कंप्यूटर है, लेकिन इस कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करता है, हु इज द ऑपरेटर ऑफ दिस कंप्यूटर, कौन है, माइंड है, माइंड नहीं है, माइंड तो सॉफ्टवेयर है ना, आत्मा है, हम हैं, वी आर द ऑपरेटर। और हम कौन है, मैं कौन हूं, इसमें तीन ऑप्शन है, कौन सा राइट ऑप्शन है, आई एम ए सोल इन माई बॉडी, यही राइट ऑप्शन है। सोल का फुल फॉर्म क्या होता है, सोल का फुल फॉर्म सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट, क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। लाइट इज ए एनर्जी, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ऊर्जा है, ऊर्जा का ना सृजन होता है ना विनाश होता है, इसलिए आत्मा को कहते हैं अचर अमर अविनाशी है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मतलब बॉडी, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग, इसके अंदर जो एनर्जी है उसको बीइंग कहते हैं, लाइट एनर्जी, दोनों मिला के ह्यूमन बीइंग हो गया। ह्यूमन बीइंग से बीइंग डिपार्ट हो गया तो क्या बचेगा, डेड बॉडी बचेगा ना, बचेगा नहीं बचेगा, एक बचे। और हमारे मशीन क्या है, सारा लाइट एनर्जी से चलते हैं। अगर एनर्जी में वोल्टेज कम आ जाए, अगर पेट में मान लीजिए वोल्टेज कम हो गया पेट का, तो खाना पचेगा नहीं पचेगा। हार्ट की वोल्टेज कम हो गई तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, वोल्टेज बिल्कुल फास्ट हो गई हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो हमारा लाइट एनर्जी ही हमारे बाकी सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। और यह लाइट एनर्जी जो कहां रहता है, ब्रेन में, यह हमारा सीट है। ऑपरेटर कहां बैठता है, ब्रेन के अंदर बैठता है, न्यूरो इंडोक्राइनल एक्सिस जहां पे है, जंक्शन है, एग्जैक्टली यहां पे बैठता है। और आप देखिए यही लाइट तो निकलती है, क्या निकलती है, लाइट निकल गई, एनर्जी हैज गॉन। हमारा जो मेन टूल है मेमोरी के लिए वो है माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि, ये दोनों मिलकर के ही माइंड मेमोरी की प्रोग्रामिंग करते हैं। और जो चीज प्रोग्राम हो जाती है वो ऑटोमेटिकली हमारे मोटर ऑर्गन को ऑर्डर देती है। जैसे आपने टाइप राइटिंग सीखा और टाइप राइटिंग सीखते समय उंगलियों का जितना इंप्रेशन है, बार बार एक्शन का इंप्रेशन है, वो मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाएगा। जब पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा राइटिंग का, तब आप जैसे टाइप राइटर के आगे बैठेंगे ऑटोमेटिकली वहां से बटन दबेगा और आपकी उंगलियां चलने लगेगी। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हमारे एक्शन को हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर कहां लोड करते हैं आप, मेमोरी में करते हैं। मेमोरी क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और मेमोरी लैंग्वेज क्या है? माइंड और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए चार लैंग्वेज चाहिए। जब इन चार लैंग्वेज के ऊपर आप वर्कआउट करना शुरू कर देंगे तो आपकी मेमोरी डबल हो जाएगी, तुरंत चुटकी बजाय डबल, माइंड बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। और आज आपको हम सामने प्रूव करके दिखाएंगे, आप भी फील करेंगे कि इन चार लैंग्वेज के द्वारा जिस चीज को आप बहुत डिफिकल्ट समझते थे वो बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी बच्चा कंप्लेन करता है, कहता है हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन कोई हम कंप्लेन करता है कि मुझे फिल्म देखने में मन नहीं लगता, 3 घंटा फिल्म के आगे पूरा पूरा माइंड फोकस रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, टीवी देखने में मन नहीं लगता, कोई बताए? एक छोटा सा बच्चा 6 साल का वो टीवी देख रहा था, मैं वहां पे गया मेरे फ्रेंड के यहां, टीवी के आगे बैठ करके वो रोटी खा रहा था, एकदम कंसंट्रेटेड। रोटी था, दाल था, वो दाल रोटी को खा रहा था, रोटी को दाल में डालता खा रहा था, और उसका माइंड एकदम टीवी के कार्टून पे फोकस था। मैं उसका पलक एकदम उसी के ऊपर था, मैंने क्या किया, उसकी दाल की कटोरी हटा दी, उसको पता नहीं चला। वो रोटी वैसे ही टुकड़े कर रहे हैं और डालता है, खा जाता है, उसको पता ही नहीं कि वो दाल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा रोटी खा गया, दाल की कटोरी पीछे थी। मैंने पूछा, बेटे क्या खाए? बोला दाल रोटी खाया। पूरा खा गया? हाँ सब खा गया। बोला दाल की कटोरी कहाँ है? तो ढूंढ रहा है तो दाल की कटोरी में, बोला देखिए पूरा दाल तो बचा हुआ है, आपने तो खाया ही नहीं। तो एकाग्रता कितनी होती है? एकाग्रता वहां पे क्यों है? टीवी शो में एकाग्रता है, मूवी में एकाग्रता है, क्योंकि वहां पे ये चारों लैंग्वेज यूज होती है। वहां पे क्या होता है? इमेजेस होता है, कलरफुल इमेजेस होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, कोरियोग्राफर का आर्ट, डिजाइंस, ग्राफिक्स, 3D पिक्चर्स, ये सारा रहता है, इसलिए माइंड वहां पे फोकस्ड हो जाता है। तो आपको मेमोरी एंड माइंड मैनेजमेंट के लिए इन चार लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। आपका माइंड हमेशा यही चारों चीज डिमांड करता है हर वक्त आपसे, आप नहीं देते, जब नहीं देते तब ये वही भागता है जहां पे चारों चीज है। आप देख लीजिए, आप ऑफिस से घर पे जाते हैं, घर पे आप स्ट्रेस में हैं, आपका माइंड को डिमांड, माइंड डिमांड करता है इमेज इमेज इमेज, कलर म्यूजिक आर्ट, आप क्या करते हैं, टीवी का रिमोट लेते हैं, ऑन कर देते हैं, टीवी ऑन हो जाता है, उसमें क्या आता है? यही तो आता है, आपका माइंड फोकस हो गया। आप वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करते समय भी आपको म्यूजिक चाहिए, कान में लगा लिया, म्यूजिक सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं अपने आप, माइंड डिमांड करता है। खाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, तब भी आप क्या करते हैं, आप मेमोरी का बटन दबाते हैं और मेमोरी से अपना पास्ट की वीडियो निकाल के देखते रहते हैं, या तो कोई फिल्म देखते हैं या तो अपनी फिल्म बना लेते हैं अपने किसी के साथ में मिलकर, या तो फ्यूचर का अच्छा सा मूवी बनाते हैं, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, ऐसा बिजनेस करूंगा, यहां से पैसा आएगा, पूरा वीडियो मूवी तैयार हो जाता है। तो हर वक्त आपका माइंड में क्या चलता है आप बताओ? इमेज ही तो चलता है, जो इमेज देते हो वैसा ही आपका रिएक्शन होता है। अगर किसी ने आपके इमेज दे दिया डर का, तो क्या होगा? आपको डर लगेगा, लगेगा ही नहीं लगेगा। पिन डाउट किस चीज का निकलेगा, डर का निकलेगा, हार्ट बीट ऑन हो जाएगा, हाथ कांपने लगेंगे। तो सारा खेल इमेज का है। तो आपको मैनेज करने के लिए अच्छा इमेज दीजिए। कोई आपको स्ट्रेस का इमेज देता है, आप स्ट्रेस हो जाते हो। कोई डर का इमेज देता है, डर आ जाता है। कोई आपको गुस्से का इमेज दिलाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। और आप कहते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उसने गुस्से का इमेज दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने कंप्यूटर में उसको एंटर कर दिया इमेज को, बस गुस्सा आ गया। तो आप जब जब रॉन्ग इमेज को इसमें डालते हैं, वैसे वैसे ही आपका माइंड और मेमोरी मिसमैनेज हो जाता है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तभी फालतू फालतू की बातें दिमाग में आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई की इमेज नहीं बनाते। जब इमेज बनाते नहीं, इमेज बनाने में मन लगाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी। जब क्रिएटिविटी डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा, माइंड डिमांड करेगा इमेज इमेज इमेज। तो ये आंखें रहेगी किताब के अक्षरों के ऊपर, लेकिन माइंड को इमेज चाहिए, तो मेमोरी से अच्छा कोई इमेज आ जाता है और वही इमेज चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और आप कहेंगे कि क्यों आ रहा है, आएगा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप इमेज नहीं बना रहे इसलिए आ रहा है। आप इमेज बनाइए, क्रिएटिविटी लाइए तो जरूर हो जाएगा। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। इमेजिनेशन नॉलेज से भी पावरफुल है, क्योंकि बिना इमेजिनेशन का नॉलेज की चाबी नहीं मिलती। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा, उसको कौन सा इमेज मिला? उसने देखा सेव गिर रहा है नीचे, उसका इमेज मिला, उस इमेज के बारे में सोचना शुरू किया और उसके अंदर से ही नॉलेज का फोल्डर खुल गया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख दिया। तो नॉलेज हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढते हैं। जब हम बाहर ढूंढते हैं तो मिलता नहीं। अभी आप देखिए इमेजिनेशन से आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। आपको इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं आता। रिसर्च हुआ इमेजिनेशन न होने के कारण आपका ब्रेन का कैपेसिटी 1% भी इस्तेमाल नहीं होता है, 1% भी नहीं होता। अल्बर्ट आइंस्टीन 10% से ज्यादा यूज किया था, कहा जाता है 13 या 17% यूज किया था। आज के डेट में जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, वो सिर्फ 3% यूज करता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एक्सरसाइज देता हूं आप लोगों के लिए। आप सभी अपना इमेज मिरर में तो डेली देखते हैं, डेली देखते हैं कि नहीं देखते? ओके, ठीक है। आप अभी आंख बंद कीजिए और मेमोरी से अपना, मेमोरी में अपना एल्बम ढूंढिए और अपने एल्बम से अपना इमेज अपने मॉनिटर पे निकाल के देखिए। देखिए तो दिखाई दे रहा है? अमिताभ बच्चन का इमेज देखिए, दिखाई दे रहा है? उसका अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपका दिखाई दे रहा है? हाँ, उसका दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको टीवी पे कलरफुल देखते हैं, बार बार देखते हैं, हजार बार देखते हैं, और अपना इमेज दिन में 2 बार 3 बार देखते हैं। देखते समय भी आपके मॉनिटर पे कई सारे फोल्डर खुला होता है, यहां जाना है, ये करना है, वैसा करना है, और उसी बीच में ही आपका इमेज आ जाता है। तो आपके इमेज का चित्र मेमोरी में धुंधला बनता है। इसलिए जब अभी आपने रिकॉल किया ना, कैसा आया? धुंधला आया। कईयों का आया ही नहीं। ओके, तो अभी हम आपका कलर का स्पीक चेक करते हैं, देखते हैं कलर कैसा है। ये लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए, एक बार पढ़िए तो देखिए। पढ़ लिया आपने? अभी जो जिस कलर में लिखा गया उस कलर को पढ़िए। येलो को ग्रीन पढ़ना है, ब्लू को रेड पढ़ना है, ऑरेंज को ब्लू पढ़ना है, ब्लैक को येलो पढ़ना है, रेड को ब्लू पढ़ना है, ग्रीन को ब्लैक पढ़ना है। जिस कलर में एक कलर लिखा गया वो कलर पढ़िए आप। अभी आपका स्पीड स्लो हो गया कि ज्यादा हो गया? स्लो हो गया। इसका मतलब है कि आप लेफ्ट पार्ट का ज्यादा यूज करते हैं, राइट पार्ट का कम करते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने देखा है ब्रेन के ऊपर ही रिसर्च किया, माइंड के ऊपर डॉक्टरों ने रिसर्च नहीं किया। जब ब्रेन के ऊपर रिसर्च किया तो पाया गया कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं जिसका अलग अलग यूज होता है। जैसे हमारे दो हाथ है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों का इस्तेमाल अलग अलग है। उसी तरह जब भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, एनालाइज करता है, करते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, तो उस समय आप ज्यादातर अपने लेफ्ट पार्ट का यूज करते हैं। जब भी आप इमेज देखते हैं, कलर को पढ़ते हैं, कलर को विजुलाइज करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, पेंटिंग करते हैं, आर्टिस्ट का काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं, उस समय आपका राइट ब्रेन का ज्यादा यूज होता है। जब आप राइट ब्रेन का यूज करते हैं तो आपका मेमोरी स्ट्रांग हो जाता है, परमानेंट हो जाती है, क्योंकि राइट ब्रेन का कनेक्शन हमारे परमानेंट मेमोरी से है, लेफ्ट ब्रेन का कनेक्शन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से है। वो लॉजिकल होता है, क्रिएटिव नहीं होता है, वो जंप करता रहता है, भागता रहता है। इसीलिए जब आप लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं आपको मन भागता रहता है, भागता रहता है। उसको पिक्चर नहीं देते हैं, इमेज नहीं देते हैं, तो पिक्चर को सर्च करता रहता है बार 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 बार, इसलिए भागता है। इसलिए आप कहते हैं मेरा मन चंचल है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेमोरी स्ट्रांग नहीं है। आप देखिए मनुष्य और बंदर में क्या अंतर है। बंदर ज्यादातर लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करता है, मनुष्य ज्यादातर राइट ब्रेन का इस्तेमाल करता है। और जब हम ज्यादा लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्वभाव ही बंदर जैसा हो जाता है। इसीलिए गीता में अर्जुन ने भगवान से जब प्रश्न पूछा तो यही कहा, हे भगवान, मन तो बहुत बंदर की तरह चंचल है, ऐसे चंचल मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। भगवान ने जवाब दिया कि बिल्कुल सच कहते हो, मन बंदर की तरह चंचल है, लेकिन चंचल बंदर के स्वभाव को जान करके पकड़ा जाता है, उसकी कमजोरियां क्या है। तो मन की कमजोरी क्या है? इमेज है, कलर है, उसको हमेशा इमेज कलर चाहिए। तो अच्छा अच्छा इमेज दिखाओ, अच्छा अच्छा कलर सोचो, तो आपके माइंड में पावर आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है पावर, इंस्टेंटली कैसे आती है माइंड में। लेकिन हम ना कलर दिखाते हैं ना इमेज दिखाते हैं, इसलिए मन बंदर की तरह भागता रहता है, हम परेशान हो जाते हैं, आत्मा परेशान हो जाती है। अभी इसीलिए आप सपने देखते हैं, सपने सुनते नहीं है, क्योंकि सपने में भी क्या है, मेमोरी में वही इमेज ही रिकॉर्ड होता है। जब सोते हैं आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में होता है तो वो इमेज बार बार निकल के आता रहता है और आप तीसरे आंख से देखते रहते हैं। अभी एक एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको 15 वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट्स है, ये आपको एक बार पढ़कर याद करना है। 30 सेकेंड्स में आपको टाइम दे रहा हूं, 30 सेकेंड्स स्टार्ट्स नाउ। आप पढ़िए इसको, ओके 30 सेकेंड्स होगा। कितने लोगों को याद हो गया? याद नहीं हुआ? ओके जब भी आपने याद करने की कोशिश की, आपने क्या किया, आप इसको पढ़ करके याद करना चाहा। आप पढ़ते समय किस ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे? लेफ्ट ब्रेन का, जिसका कनेक्शन सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी से है। अगर आपको मैं 2-3 मिनट दे दूं तो आप याद कर भी लेंगे, लेकिन 2 घंटे बाद फिर आप भूल जाएंगे। क्योंकि ये चीज आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। इसको परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही यूज करना पड़ेगा जो आपके माइंड को चाहिए। अब ये सारे चीज, ये 15 आइटम आपको 10 सेकंड्स में याद हो जाएगा, बिलीव हो रहा है? 10 सेकंड में आप याद करना चाहेंगे? ओके, अभी 10 सेकंड में आपकी मेमोरी देखिए डबल हो जाएगी, क्योंकि आप राइट ब्रेन का बटन दबाएंगे, सारा का सारा याद हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इन 15 ऑब्जेक्ट्स को हम कलरफुल इमेज में बदल देंगे। आप देखिए ध्यान से उस इमेज को, 10 सेकंड एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अभी देखिए, आपको इस फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है जिसमें स्कूटर है, दिखाई दिया? उसके नीचे क्या है, विंडो से क्या आ रही है, बटरफ्लाई सांप का पीछा कर रही है, सांप तलवार लेके माइकल जैक्सन का पीछा कर रहा है, और माइकल जैक्सन डर के कारण सोफे के नीचे छिपा हुआ है, दिखाई दिया आपको? सोफा गोल्ड का बना हुआ है, उस गोल्ड के सोफे पे टाइगर बैठा है जिसके राइट हैंड में चॉकलेट है, टाइगर के सिर के ऊपर एक पॉट है, पॉट में दो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के ऊपर चिड़िया बैठी है और चिड़िया की चोंच में चाबी है। अभी आप देखिए, याद हो गया पूरा, हो गया कि नहीं हो गया? मैं अगर आपसे पूछूं माइकल जैक्सन कहां था, सोफे के नीचे, चाबी कहां थी, चिड़िया के चोंच में, चिड़िया किसके ऊपर बैठी थी, ट्यूबलाइट के ऊपर, कितनी ट्यूबलाइट थी, देखिए ये भी याद है आपके, देखिए कितना अच्छा से कॉपी हुआ है ना। चॉकलेट कहां था, टाइगर के लेफ्ट हैंड की राइट हैंड में, वेरी गुड, ये भी याद है आपको। और सोफा किस चीज का बना था, गोल्ड का। तलवार कहां था, सांप के मुंह में, या सांप को कौन पीछा कर रहा था, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कहां से अंदर आए, विंडो से, विंडो के ऊपर क्या था, फोटो फ्रेम, और फोटो फ्रेम में क्या था, देखिए आपको बीच से पूछूं, आगे से पूछूं, पीछे से पूछूं, पूरा याद हो गया कि नहीं हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? थैंक यू। तो आपकी मेमोरी अच्छी है कि नहीं, आप बताओ। आप फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने के बाद पूरा उसका डीवीडी आपके मेमोरी में कॉपी होता है कि नहीं होता है, हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, इमेज है, कलर है, म्यूजिक है, आर्ट है। तो आपको माइंड और मेमोरी मैनेज करने के लिए आपको अपना इमेज डेवलप करना पड़ेगा। होता क्या है, मिसमैनेज क्यों होता है, क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा कोई इमेज बनाता है और वो उस इमेज में क्या कहता है, वायरस छोड़ देता है, और वो वायरस आपके मेमोरी में चला जाता है, फिर आपके पूरा कंप्यूटर को हैंग अप कर देता है ना। जैसे एकता कपूर का सीरियल चला था ना 10 साल, सास भी कभी बहुत हुई, है ना, वो आपके लिए पिक्चर बनाती थी, आपके लिए इमेज, कलरफुल इमेज बनाती थी, आपके लिए म्यूजिक डेवलप करती थी, और आप डेली 10 बजे का इंतजार करते थे कि आज क्या इमेज दिखाएगी, है ना, और उस इमेज में वायरस आ जाता था, घर घर में लड़ाई होती थी। तो जैसा इमेज होता है वैसा ही आपका रिएक्शन होता है, वैसा ही आपका एटीट्यूड बनता है, वैसे ही आपकी माइंड की मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट होती है। तो राजयुग के द्वारा कैसे माइंड और मेमोरी को मैनेजमेंट करें, क्योंकि राजयुग में अच्छी अच्छी इमेज होती है। आप यहां पे आए हैं, आपको अच्छा अच्छा इमेज दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है ना। तो उस इमेज को जब रिकॉल करके मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन शांत होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आप राजयुग मेडिटेशन में अगर इमेज नहीं देखते, कलरफुल इमेज नहीं देखते, तब फिर आपका मन क्या करता है, मन में फिर वो दूसरा वीडियो खोल देता है, फिर आप मेडिटेशन में बैठे बैठे उस वीडियो को देखते रहते हैं, फिर आप क्या कहते हैं, तो योग में मन ही नहीं लगा, आज तो मेरा मेडिटेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी कम है। अभी देखिए आप यहां पे हैं, राजयोग से 8 शक्तियां याद होती है, या राजयोग से 8 शक्तियां प्राप्त होती है, ये 8 शक्तियों को याद करना है, 8 पॉइंट है याद करना है आपको, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये भी 30 सेकेंड्स में याद हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, ऐसे अगर याद करेंगे, पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट, ये लेफ्ट ब्रेन से करेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन इस चीज का एक पिक्चर बना देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपने यहां पे देखा होगा 8 गैलरी में इन 8 शक्तियों को 8 पिक्चर बनाया गया है, बनाया गया ना, आप देखिए ये पिक्चर बनाया गया ना, पावर टू पैकअप, पावर टू पैकअप को दिखाया गया है कछुआ से, टॉर्टोइस से। इसको दिखाया गया है कि कछुआ जब चलता है तो पैरों को बढ़ा लेता है, और जब चल मंजिल पे पहुंच जाता है तो पैरों को अंदर कर लेता है। इसको कहा गया पावर टू विड्रॉ। एक है पावर टू पैकअप, पैकअप पैकअप करते हैं सामान जो जरूरी होता है उसको पैक करते हैं। पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप में अंतर है। पावर टू विड्रॉ का मतलब हुआ कि हम सब आत्माएं हैं, आत्मा की एनर्जी पूरे शरीर में फैला करके काम करना, इसको कहते हैं पावर टू एक्सपैंड। पावर टू विड्रॉ का मतलब काम कर लिया और अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया, रिलैक्स हो गए, माइंड को मैनेज कर लिया, ये हुआ पावर टू विड्रॉ। पावर टू पैकअप का मतलब आप कहीं भी ट्रेवलिंग पे जाते हैं, आप क्या करते हैं, एसेंशियल आइटम लेके जाते हैं, पूरा घर तो उठा के नहीं लेके जाते। उसी तरह जब भी आप जाएं, जहां भी जाएं, आपके पास एसेंशियल क्वालिटीज हो, स्माइल हो, हमेशा रिलैक्स रहें, हैप्पीनेस में रहें, तो ये सारा क्वालिटीज को पैक करके चलें हमेशा, ये जरूरी है, तभी आप फ्रेश रहेंगे। अगर टूथब्रश भूल गए तो क्या होगा, है ना, खरीदना पड़ेगा या बिना मुंह धोए रहना पड़ेगा, स्माइल नहीं आएगी। उसी तरह हैप्पीनेस को पैक करके चलिए, हमेशा स्माइल करते रहेंगे। तो पावर टू पैकअप का मतलब होता है कि हमारी वर्च्यूज हमारे साथ में हमेशा रहे, दैट इज कॉल्ड पावर टू पैकअप। इसको पैकिंग से दिखा दिया। पावर टू टॉलरेट को किस चित्र से दिखाया गया, पत्थर फेंक रहा है व्यक्ति, पत्थर की चोट खा करके भी उसको क्या मिल रहा है, आम मिल रहा है, सहन शक्ति हो गया। एडजस्ट का पिक्चर है नदी और सागर, नदी सागर में समाता है तो नदी का किचड़ा सागर बाहर फेंक कर देता है और नदी को आपस में समा लेता है, तो पावर टू एडजस्ट हो गया। पावर टू जज का बैलेंस दिखाया गया है, तराजू तराजू। पावर टू डिस्क्रिमिनेट को गोल्ड स्मिथ दिखाया जा रहा है, सोना वो असली है कि नकली है। और पावर टू फेस को दिखाया गया है डेड बॉडी। सबसे ज्यादा परिस्थिति खराब कब होती है, डेथ के समय, उस समय पावर टू फेस। और पावर टू कोऑपरेट का उंगली से पहाड़ उठ गया सभी के सहयोग से। अब इस आठ शक्तियों को याद करना है तो कैसे याद करेंगे, इमेज तो समझ में आ गया, और एक इमेज को दूसरे इमेज से क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, आपको याद हो जाएगा। अभी सभी आंख बंद कीजिए, मैं इसको लिंक करने कर रहा हूं। आप देखिए, एक एक आपने कछुआ पकड़ा, कछुआ को आपने सूटकेस में पैक किया, पैक करके आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ते में आम का पेड़ मिला, आपने पत्थर मारा, आम गिरा, आम खाया, आम खाने के बाद हाथ धोने के लिए नदी में गए, जैसे नदी में गए वहां पे आपको अंगूठी मिली, उस अंगूठी को लेकर के आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं परखो ये राई असली सोना है कि नकली सोना है, वो परख के बोलता है तो असली सोना है, फिर वो बैलेंस पे उसको मेजर करता है कितना इसका वेट है, फिर वो डिसीजन लेता है हम बेच देते हैं, उन्होंने बेच दिया, पैसे लिए, पैसे लेके जब बाहर आया तो एक डेड बॉडी दिखाई दिया, और वो उसके फ्रेंड्स के नियर और डियर की थी, फ्रेंड उसका रो रहा था, वो गया उसके पास और जो भी पैसे मिले थे उसको दे दिए, उसको कोऑपरेट किया। अभी आंख खोलिए, अभी आपको पूरा आठ शक्ति याद होगा कि नहीं हो गया। फर्स्ट क्या था, पावर टू विड्रॉ, दूसरा क्या था पैकअप, तीसरा क्या था टोल रेट, चौथा क्या था, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ओके अभी फिर से बोलिए, पहला क्या था पावर टू, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था एडजस्ट, पांचवा क्या था डिस्क्रिमिनेट, सिक्स क्या था बैलेंस, बैलेंस से पावर टू जज, सेवेंथ क्या था पावर टू फेस डेड बॉडी से, एंड फिर लास्ट पावर टू ऑपरेट। याद होगा कि नहीं हो गया, तो कोई भी चीज याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसा बनाना पड़ेगा इमेज, इमेज नहीं बनाते इसलिए याद नहीं होता, इसीलिए हमने मेमोरी लैब खोला है, हमारे मित्र विष्णुपुरा चौधरी उनके साथ मिलकर मेमोरी लैब खोला है, होम मेमोरी लैब हम स्कूलों में लगाते हैं, जहां पे इमेज के द्वारा बच्चे पढ़ते हैं और तुरंत उनको याद हो जाता है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी के मैप्स हो, साइंस के इक्वेशन हो, फॉर्मूले हो, सारे याद हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे रट्टा लगाते हैं, हमने उसको इमेज बनाना सिखा दिया, मेमोरी इजी हो। तो आप मेमोरी मैनेज के लिए आंसर को याद करना है, मेमोरी और माइंड मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, आंसर को याद करना है। आंसर का मतलब होता है ए फॉर एसोसिएशन, हर एक चीज को एसोसिएट करना है, जैसे आपने एसोसिएशन किया। एन का मतलब होता है नो टू वेस्ट और नेगेटिव फाइल, आपके मेमोरी में जो कचरा पड़ा हुआ है उसको बंद करना है, उसको निकालना है। एस का मतलब होता है स्लीप को मैनेज करना, आपने स्लीप मैनेजमेंट की आज क्लास की ना, कैसे स्लीप को मैनेज करना है ये आपने सीख लिया, स्लीप को अच्छा से मैनेज कीजिए, खूब पानी पीजिए, क्योंकि ब्रेन में 80% से ज्यादा पानी है जिसको सेरेब्रल फ्लूइड्स कहते हैं, जितना पानी पिएंगे उतना आपका ब्रेन ऑक्सीजनेटेड होगा। आई ऑफ सोल, आंख को, आत्मा के आंख को यूज करना, आत्मा का आंख है थर्ड आई, इसलिए हमने मेमोरी के ऊपर बुक लिखी है, उसका नाम है पावर ऑफ थर्ड आई, तीसरा नेत्र की शक्ति, उससे स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और आर का मतलब है रिडिक्यूलस आइडिया, लर्न विथ फन, कैसे आपने आराम से फनी वे में लर्न कर लिया। इस तरह आंसर टेक्निक को याद करना है मैनेज करने के लिए। और वायरस, हमारे कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकना है, सबसे बड़ा दो वायरस है इसको रिमूव करना है, एक है एंगर, दूसरा है फियर। जब भी गुस्सा आता है, गुस्से के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, इंडोस्कोपी किया गया एक पेशेंट को, और उस समय उसको स्ट्रेस दिलाया गया, गुस्सा दिलाया गया, और जब गुस्सा दिलाया गया तो उसके पेट में ब्लीडिंग हो रही थी। आप देखिए जितना बार आप गुस्सा करते हैं ना, आपकी पेट में ब्लीडिंग होती है, ब्लड दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दिया ब्लड का स्पॉट, दिखाई दिया, ये सारा ब्लड का स्पॉट है जो आप गुस्सा करते हैं तब होता है, ठीक है। जितना बार गुस्सा करते हैं उतना बार आपके पेट में ब्लीडिंग होता है, आपको पता नहीं लगता, और वो बार बार गुस्से के कारण, बार बार शॉर्ट टेम्परामेंट्स के कारण आपके पेट में गुस्से के कारण अल्सर हो जाता है, और फिर वही अल्सर कैंसर में बदल जाता है, एक दिन में कैंसर नहीं होता है। और ये देखा गया है कि जिसको ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर होता है या पेट का कैंसर होता है, उनका लाइफ स्टाइल पर रिसर्च हुआ तो पाया गया कि वो बहुत इरिटेटेड स्वभाव के थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे। आप सोचते हैं कि हमें गुस्सा, हम गुस्सा करते हैं तो उसको फर्क पड़ेगा, उसको फर्क पड़े ना पड़े आपको फर्क जरूर पड़ेगा, है ना, तैयार रहिए फिर फेस करने के लिए। उसी तरह डर, डर के कारण आपका हार्ट खूब पंप करता है, और जब पंप करेगा आपका तो देखिए क्या होता है, पूरा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। आवाज नहीं है क्या, वीडियो का आवाज नहीं है, आवाज आप देखिए पूरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई, पूरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई। जितना बार आपका, इसलिए कहते हैं गुस्से में चेहरा लाल और डर में चेहरा पीला। गुस्से में चेहरा लाल क्यों होता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो ऊपर होता है, इसलिए ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। और डर में चेहरा पीला क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पैरों में ज्यादा होता है भागने के लिए, चेहरा पीला हो जाता है। तो ये दो वायरस है, ये दो वायरस को आपको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर बार बार हैंगअप होता रहेगा, आप कहेंगे आज मेरा मूड ऑफ है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, हमेशा मूड ऑफ रहेगा, कंप्यूटर शटडाउन रहेगा, मेमोरी वीक हो जाएगी, माइंड पावर वीक हो जाएगी, माइंड और मेमोरी दोनों मिसमैनेज होते रहेंगे। मेन प्रॉब्लम रिकॉल में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन वेव्स, जो आपने देखा होगा, और हम अपने मशीन से यही देखते हैं। इस मशीन का नाम हमने एक और दिया है इनविजिबल डॉक्टर स्टेथोस्कोप, क्योंकि ये अंदर के डॉक्टर को ब्रेन की, अंदर के डॉक्टर का प्रभाव देखता है, अंदर का डॉक्टर कैसे हमारे बॉडी में चेंजेस होता है उसको मेजर करता है, माइंड कैसे हमारा रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस रहता है, इसको मेजर करता है। इसलिए इसका नाम हमने इनविजिबल डॉक्टर स्टेथोस्कोप हैप्पीनेस मशीन भी दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा निगेटिव थॉट्स होगा उतना असर आपके बॉडी के ऊपर होगा। आपके बॉडी में डिजीज आपके निगेटिव थॉट्स के कारण होता है। आप देखिए,
द इनफ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इज प्योरली बेस्ड ऑन आवर थॉट्स। व्हेन वी हैव थॉट्स, द इनफ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इज, इन अदर वर्ड्स, आवर थॉट्स आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फॉर द इनफ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। When the inflow of cosmic energy is less, the energy in the energy tubes depletes. This depletion causes etheric patches in the energy body. These etheric patches gradually lead to diseases in the physical body. In other words, root cause for all diseases is the lack of energy in the etheric body.
आप देखिए, हमारे चार्ज नहीं होती है, हमारी बॉडी में एथरिक पैचेस हो जाते हैं, वो अभी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। हमारी बॉडी सोल, आपने सोल क्या है, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। अब ये लाइट एनर्जी कहां से आती है, आप बोलिए कि पावर हाउस में पावर कहां से आता है, सोर्स से आता है, जहां बिजली बनती है वहीं से होता है ना। पावर हाउस में क्या होता है, पावर स्टोर्ड होता है। पावर हाउस क्या करती है, उसको ट्रांसफॉर्मर में देती है, ट्रांसफॉर्मर करंट को क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करके अलग अलग तारों में सप्लाई करता है। फिर अलग अलग तारों से हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं, लेते ही नहीं लेते हैं। हमारा सुप्रीम सोर्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्सल लाइट है ईश्वर, गॉड। वो गॉड है उस सोर्स ऑफ पावर, वहीं से पावर जनरेट होती है। और वो पावर को टैप कौन करता है, वो कहां स्टोर होती है पावर, हमारे सोल में, सोल के अंदर। सोल उस पावर को माइंड में रिलीज करता है और माइंड उस पावर को ब्रेन में रिलीज करता है, ब्रेन उसको हमारे स्पाइनल कॉर्ड में देती है और स्पाइनल कॉर्ड से सारे अंगों में एनर्जी जाती है। हमारी स्टोरेज कब होती है, जब हम सोते हैं तो पावर हाउस क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर्ड एनर्जी को फिर हम खर्च करते हैं। जब हमारा कनेक्शन सोर्स से कट जाता है तो हमारे बॉडी में डिजीज हो जाता है, या हम बार बार निगेटिव थॉट्स चला करके उस सोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, तब भी हम बीमार पड़ जाते हैं। और डिजीजेस आजकल के हमारा लाइफ स्टाइल से भी होता है, अनहेल्दी फूड, नॉन वेजिटेरियन डाइट। आप देखिए,
केवल मरते हुए मुंह से निकलती हुई गला की भीख नहीं, बल्कि उसकी बद्दुआ है, अभिशाप है, मानव जाति के हर एक मांस भक्षक पर। मांस भक्षते यास भेद भक्ष्या राम पाप्या, अर्थात मनुष्य तू मुझे खाएगा और मैं तुझे खा जाऊंगा एक दिन।
आपने देखा कैसे हमारे बॉडी के ऊपर असर होता है, इसलिए कहा जाता है जैसा होता अन्न वैसा होता है मन। इसलिए माइंड को मैनेज करने के लिए अन्न पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और हमारे एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइंड पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। माइंड पावर है क्या चीज, सोल एनर्जी क्या है, कैसे सोल की एनर्जी माइंड पावर और फिजिकल पावर में ट्रांसफॉर्म होती है। आप देखिए, एनर्जी का डिफिनेशन हम क्या देते हैं, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द थिंग्स, यही है ना। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और पावर शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो सोल क्या है? एनर्जी है। उस एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मर रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर इनटू मेंटल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी, तो हम क्या कहेंगे? पावर ज्यादा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो कैसे हमारा सोल की एनर्जी मेंटल और फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, आप में से कोई भी दो आदमी स्टेज पे आ जाए, दुबले पतले चाहिए हमें, बच्चा हो तो बच्चे आ सकते हैं ना? हाँ, ये आ सकता है, आ जाओ, आ जाओ, दोनों बच्चे आ जाए, बस नहीं, दो आदमी आ जाए, दो आदमी, जूते खोल देना। आपका क्या नाम है बेटे?
आयुष।
आयुष, कितने साल के हो?
15।
15 साल के, किस क्लास में पढ़ते हो?
10th।
10th, कहाँ से आए हो?
रेवाड़ी, हरियाणा।
हरियाणा से आए। तुम्हारा क्या नाम बेटे?
कार्तिक।
कार्तिक, कहाँ से आए हो?
अम्बाला।
अम्बाला से आए हो, वेरी गुड। और किस क्लास में पढ़ते हो?
7th
में पढ़ते हो, वेरी गुड। चलो, अभी इन दोनों बच्चों का हम देखेंगे कि सोल की एनर्जी मेंटल और फिजिकल एनर्जी में कितना परसेंटेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना। एक तो मशीन का रीडिंग आपने मशीन में किया था, कितना था आपका?
29।
आपका कितना था?
66।
आपको बहुत ज्यादा है ना? ठीक है, एनीवे हमें कितना है अभी इनका चेक करने के लिए, आप ऐसे करो, ऐसे पूरा पैर के मिलाओ, हाँ ठीक है, और ऐसे करो, हाँ ठीक है, इनको हम नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे। आपको झुकना नहीं है, पूरा पावर लगाना है अपना, ठीक है, मैं एक हाथ से झुकाऊंगा, झुक रहे हैं ना, झुक रहे भी नहीं, रुक रहे, एक हाथ से भी झुक गए आपको बेटे, है ना, ठीक है। अच्छा, पीछे से एक बार मैं झुका के देखता हूँ, पीछे से, आगे से, चलो ऐसे करो, हाँ ऐसे ही करो, आप भी ऐसे करो, ओके, आप भी ऐसे ही करो, ठीक है, पैर मिला लो, पैर मिला लो ना तो जल्दी गिर जाओगे, ठीक है, मैं अभी देखा था, ताकत लगाना है, अरे तुरंत झुक गए, ताकत लगाओ,
पीछे रखती हूँ,
पीछे उठती नहीं, ओके एनी, चलो आप खड़े रहो, अब देखिए, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, अभी हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन बच्चों के सोल की एनर्जी माइंड पावर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, क्योंकि ये योग मेडिटेशन करते हो नहीं करते, करते तो हो जाता, ठीक है, ओके, देखते हैं मेडिटेशन से कैसे होता है, ठीक है। हमारे पास दो ग्लास पानी है, इधर रखा हुआ, ठीक है, हम एक ग्लास को चार्ज करेंगे और एक को हम देखते हैं, किसी को एक से चार्ज करें। ये हमारे पास एक इमेज है जिसको हमने न्यूरोबिक इमेज कहते हैं, न्यूरोबिक इमेज, यह है न्यूरोबिक इमेज, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ दिखाई देगा आपको, देखो पहले ध्यान से, पूरा कंसंट्रेट करो, फिर ये जो है इसके ऊपर देखना और इसको काउंट करना, फिर यहां भी इमेज है उसको काउंट करो, ध्यान से देखो, कंसंट्रेट करो। बाय द टाइम मैं, ये पानी है, इस पानी को मैं अपने मेंटल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इस मैटर में, अपने माइंड की एनर्जी को। हमारी मेंटल एनर्जी कन्वर्ट कैसे होगी इस मैटर में? आपके पास मोबाइल होता है ना, मोबाइल में अगर सिग्नल नहीं हो तो क्या आप बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरह इस पूरे संसार में कॉस्मिक एनर्जी प्रेजेंट है, जिसको लोग कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, क्या सर्वव्यापी है? ईश्वर की शक्ति। तो उस शक्ति से जब तक हमारा माइंड, हमारा सोल कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो एनर्जी हमारे सोल के थ्रू माइंड में नहीं आएगी, और माइंड में जब एनर्जी आएगी तो इन आंखों के द्वारा इसमें ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि माइंड ओवर मैटर, नॉट मैटर ओवर माइंड, माइंड इज ऑलवेज ओवर मैटर। तो इस मैटर में हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप ही करो, एक ही आदमी करो, ठीक है, आप इसको पूरा कंसंट्रेट करो। आपने देखा, पूरा दिखाई दिया, ये कितना इमेज है?
12
है, और ये कितना है? हाँ, ये भी काउंट करो और देखते रहो, कंसंट्रेट, कीप ऑन फीलिंग, कंसंट्रेट करो, ठीक है, आपको पूरा कंसंट्रेट करना, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक।
लो बेटे पानी पी लो. वो मशीन का है, मशीन लाना. कहाँ है मशीन? पी ले पानी, पूरा पी जाओ. अभी आपने पूरा देखा, देखा ना? देखते समय आप इसको सुनो, इसको पूरा लगाओ कान में, इसको रख दो, इसको कान में लगाओ. आवाज कम कर लो.
स्लो कर रहा.
देखो स्लो कर, देखो
बहुत फास्ट है,
स्लो हो गया.
और बहुत
कर लो अपने हिसाब से, कर लो अपने हिसाब से. चलो अभी है कंफर्टेबल? हाँ चलो कर लो. अब ध्यान करो, इमेज याद कर दो, रिकॉल करो इमेज को, छोड़ दो. इमेज याद आ रहा है ना? आंख बंद करके इमेज को रिकॉल करो, सुनते रहो और इस इमेज को रिकॉल करो. आपने पानी पिया, इन्होंने ध्यान नहीं किया, मैं देखता हूँ इनमें क्या परिवर्तन हुआ है. आप ऐसे करो बेटे, पूरा पैर लगाओ, पैर लगाओ. हाँ आप देखिए इसमें कितना ताकत है. आप में से कोई भी आके हिला सकता है, कोई भी आके इसको टेस्ट कर सकता है. जस्ट इन्होंने एक गिलास पानी पिया, ठीक है, कोई भी आकर. अच्छा अच्छा, बस पांच मिनट. ओके, आप ही लाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, आ जाइए. वैसे खड़े हो जाओ बेटे, टेस्ट करो. देख लिया आपने? हाँ, थैंक यू. अभी ये पावर तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, ये पावर तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे ही इसका कनेक्शन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएगा. इस मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, जैसे ही हम इसके कानों में लगाएंगे डिस्चार्ज हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया. अभी वैसे करो बेटे, नहीं अभी तो डिस्चार्ज कर दिया इसको, आप इसको ट्राई करना. आप उधर रहो, पैर लगाओ, पैर लगाओ. अभी देखिए, देखा आपने, देख लिया, ये डिस्चार्ज हो गया. तो कैसे हमारा पावर चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, आपने कर लिया पूरा? ओके, आपका देखते हैं. इन्होंने दूसरे बिना पानी के चार्ज किया, इमेज के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा. इनका देखते हैं पावर. चलो ऐसे करो, पैर 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 पूरा लगाओ. ओके, इसका पसीना आ गया. ओके, लीव इट. ओके, टाइम नहीं है, जाओ बैठो. हमारे कहने का मतलब है कि मेंटल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है फिजिकल स्ट्रेंथ में, आपने देख लिया. तो टाइम नहीं है, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम. ये साइंटिफिक रिसर्च हुआ है एक ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर. आप देखिए, बिफोर मेडिटेशन पानी का क्रिस्टल ऐसा था, और मेडिटेशन के बाद पानी का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ये चेंज हो जाता है ना? आप देखिए ऐसा हो जाता है, जितना आप मेडिटेशन करते हैं, कितना दृष्टि देते हैं, ये पावर चेंज हो जाता है. ठीक है, और अभी आपसे मिलने के लिए दादी आई है, दादी की विशेषता जानते हैं, दादी में कितना पावर है वो भी जानते हैं. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. ये माइंड और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो मैं चार चीजें बताई वो आपको करना है, और मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी एंड माइंड मैनेजमेंट. यही मैं कहकर खत्म करूंगा. थैंक यू. ओम शांति.
ओम शांति. आप तीन दिन से आत्मा के बारे में सुन रहे हैं कि मैं कौन, कि मैं आत्मा हूं, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं. आप यहां से जाएंगे, उसके बाद में अगर आपके कोई मिलने वाले घर वाले कोई दोस्त या बच्चा पूछेगा कि आत्मा, आप आत्मा का तो आप ये लेसन लेके आए हैं, आत्मा की भाषा क्या है तो क्या बताएंगे। आत्मा के लेसन आपने तीन लिए हैं, आप जाएंगे, आपसे आपका बच्चा पूछेगा, कोई भाई पूछेगा, कोई फ्रेंड पूछेगा कि आत्मा की भाषा क्या है तो क्या बताएंगे। हम ये मुरली सुनते हैं सवेरे रोज, हम ये मुरली सुनते हैं सवेरे रोज, मेरे को याद नहीं रहती दूसरे दिन की मुरली, तीसरे दिन की मुरली। तो मैंने एक सिस्टर से पूछा कि आत्मा की भाषा क्या होती है, उन्होंने कहा आत्मा की भाषा होती है चित्र, पिक्चर। और पिक्चर जब तुम मुरली सुनो, मुरली का मतलब क्या है, जो सवेरे प्रवचन सुनो तो सुनते सुनते जो मुरली सुनो उसके आप चित्र बनाते जाओ, चित्र बनाते जाओ। एक साथ नहीं प्रैक्टिस कर सकते, तो कोई दो तीन ऐसे बातें जो आई है उसको अपील की है उनके आप चित्र बनाओ, और चित्र बना के दो तीन चित्र भी बना के अगर याद करोगे तो आपको मुरली काफी याद रह जाएगी। तभी भाई साहब ने भी कहा पिक्चर देखते तो सारी याद रह जाती है। यहां भी जब पहले पहले राज्यों का कोर्स करने आते हैं तो उसको पहले एक प्रदर्शनी दिखाते हैं चित्रों की। आजकल तो स्कूल में स्टडीज कराते हैं तो बच्चे को आजकल बच्चों को भी जब शुरू में पढ़ाते तो कहते हैं ए फॉर एप्पल, तो एप्पल दिखाते हैं। तो ये चित्र जो है, अगर हमारे जैसे भाई साहब ने बताया चित्र, अगर हम उसका इमेजिन करते रहे तो हमारी मेमोरी बहुत डेवलप हो सकती है। भाई साहब ने एक मिनट में आपसे पूछूं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो एक और पूछूं, अगर इनकी कोई क्लास और हो सकती है तो आप।